13 फरवरी दिन मंगलवार दिन भर मैं हूँ रेहान फदर। अयोध्या से राम राज्य रथ यात्रा रवाना, मौके को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश।
बाबर के नाम का यहाँ के न्यायाधीशों को नाम मिटा लेना चाहिए। इस देश की कर्म भूमि भारतीयों की है। भारत में पैदा होने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सभी का यहाँ से।
श्रीनगर मुठभेड़ में 32 घंटों बाद सुरक्षा बलों को सफलता। विश्व रेडियो दिवस पर आपकी मुलाकात कराएंगे जाने माने ब्रॉडकास्टर और हमारे पुराने साथी परवेज आलम से।
अगर फर्ज कीजिए दुनिया में अगर कोई इस वक्त कहीं बेंचमार्क है रेडियो की दुनिया में, कहीं किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कहने में कि वो BBC है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार रजनीश कुमार से। दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जैकब जुमा को राष्ट्रपति के पद से हटाने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी ने उनके इस्तीफे के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है। ANC के महासचिव एस मागशूले ने कहा कि जुमा पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन वो अगले 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहना चाहते हैं। मागशूले ने कहा कि पार्टी नेताओं का मानना है कि जुमा जितनी जल्दी पद छोड़ेंगे उतना ही दक्षिण अफ्रीका के लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ANC नेता सिरिल रामाफोसा को राष्ट्रपति बनाना चाहती है। जुमा भ्रष्टाचार के मामलों के बाद भी पद पर बने हुए हैं। ANC महासचिव एस मागशूले ने कहा, हम फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति कल तक कुछ करेंगे। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि जुमा कल तक जरूर कुछ करेंगे। हमने कोई समय सीमा नहीं तय की है, पर वो कल तक मीडिया को बुलाकर जरूर कुछ कहेंगे। ये थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के महासचिव एस मागशूले के शब्द। केरल के कोच्चि स्थित एक शिपयार्ड में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 11 अन्य जख्मी हुए हैं। यह हादसा रविवार को दिन में 10 बजे हुआ। इस जहाज में लगभग 20 लोग काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। धमाका जहाज के टैंक में हुआ था। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया से संबंधों को सुधारने के लिए और कोशिश करने की बात कही है। दक्षिण कोरिया में शीत ओलंपिक से उत्तर कोरियाई प्रतिनिधिमंडल वापस आने के बाद किम जोंग उन के हवाले से वहां के सरकारी मीडिया ने यह बात कही है। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को शांति प्रयासों के लिए शुक्रिया कहा है। म्यांमार में 2 सशस्त्र जातीय समूहों ने सरकार के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया है। इसे बर्मा में शांति प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। द न्यू मून स्टेट पार्टी और लाहू डेमोक्रेटिक यूनियन ने सरकार के साथ यह समझौता किया है। इस समझौते के मौके पर म्यांमार की नेता आंग सान सूची ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य विद्रोही समूहों को भी शांति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर उपजे संकट के कारण म्यांमार में शांति प्रक्रिया बाधित थी। मशहूर पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील आसमा जहांगीर की लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अंत्येष्टि कर दी गई। 66 साल की आसमा जहांगीर का निधन रविवार को हो गया था। आसमा जहांगीर को आखिरी विदाई देने बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। वहां मौजूद BBC के एक संवाददाता का कहना है कि आसमा जहांगीर के जनाजे की नमाज में पुरुषों के साथ महिलाएं भी मौजूद थीं। जहांगीर अपने पूरे जीवन में महिला अधिकारों को लेकर मुखर रही थीं। आसमा जहांगीर की मौत पर दुनिया भर से उन्हें श्रद्धांजलि मिली है। गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद मोहम्मद इकबाल नाम के एक व्यक्ति ने कहा,
एक जीनियस औरत खातून थी, इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत काम किया। कुछ हमारे उनकी सोच के साथ मुखालफत भी हो सकती है, मगर वो एक बेहतरीन औरत थी। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे।
आसमा जहांगीर के मुतालिक आप बात कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी औरत थी। बड़ी उन्होंने तहरीक चलाई है कानून के लिए, बहुत अच्छा काम किया उसने।
ये थे आसमा जहांगीर की अंत्येष्टि में मौजूद मोहम्मद इकबाल के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मौत और हिंसा की खबरों पर चिंता जताई है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की एक ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी ओर दोनों पक्षों की ओर से सुलह की कोशिशें। इन सब के बीच आज से वहां राम राज्य रथ यात्रा रवाना की गई जो 41 दिन तक चलकर रामनवमी के दिन रामेश्वरम पहुंचेगी। मुख्य रथ को अयोध्या में हिंदू संगठनों की ओर से अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल का स्वरूप दिया गया और यात्रा का आयोजन एक स्वयंसेवी संस्था कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी छिपे हुए हैं। अयोध्या से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा विशुद्ध धार्मिक होती है, लेकिन जब रथ का आकार अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के ढांचे की तरह हो, आयोजकों में हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हों, तो इसके राजनीतिक निहितार्थ न निकले, ये समझ से परे है। यात्रा रवाना होने से पहले भाषणों का जोश और भाषा भी बता रही थी कि वहाँ मौजूद लोग चाहते क्या है।
बाबर यहाँ का पैदा होने वाला है, बाबर ने यहाँ जन्म लिया है। अगर उसने जन्म नहीं लिया है, जो उसकी पैरवी कर रहे हैं वो कठपुतली लोगों में कहना चाहता हूँ, उस देश से चले जाए। बाबर का गुणगान, बाबर जहाँ पैदा हुआ हो वहाँ जा सके। बाबर के नाम का यहाँ के न्यायाधीशों को नाम मिटा लेना चाहिए। इस देश की कर्म भूमि भारतीयों की है। भारत में पैदा होने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी का यहाँ से।
बजरंग दल के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा बता रहे थे कि मोदी और योगी के युग में हालात ऐसे हैं कि अब राम मंदिर बन ही जाना चाहिए।
किसी ने कल्पना की थी सऊदी अरब में वंदे मातरम, भारत पैदा कीजिए, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां भारत की जय जयकार न हो रही हो।
हालांकि रथ यात्रा का आयोजन दक्षिण भारत के एक स्वयंसेवी संगठन रामदास मिशन यूनिवर्सल सोसाइटी ने किया है, लेकिन कार्यक्रम का संचालन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश प्रवक्ता शरद शर्मा कर रहे थे और मंच पर साधु संतों, हिंदू संगठनों के नेताओं के अलावा अयोध्या से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद थे। इस यात्रा को बीजेपी का समर्थन है या नहीं, हमारे सवाल का जवाब लल्लू सिंह ने हाँ या ना में नहीं दिया।
भारतीय जनता पार्टी सरकार सब काम नहीं करती, सरकार समाज में राष्ट्रीय विचार धारा कैसे प्रभावी हो या भारतीय जनता पार्टी का काम है, वह काम कर रही है। अगर देश के हित में यहाँ है तो आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें,
लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं वो इसमें शामिल
न।
पहले ये खबर थी कि योगी जी शायद रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे यहाँ से, लेकिन फिर शायद कार्यक्रम बदल गया हो।
अब हम तो नहीं जानते, आप लोग सूचना रही होगी, हमको कोई सूचना इस प्रकार की सूचना नहीं थी। चर्चा तो बहुत प्रकार की होती रहती है।
दरअसल पहले चर्चा थी कि यात्रा को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन योगी आज त्रिपुरा में है और अयोध्या से यात्रा संतों के भगवा झंडे देख कर ही आगे बढ़ गई। यात्रा में स्थानीय लोग न के बराबर थे और हजारों लोगों की क्षमता वाले कारसेवकपुरम में महज कुछ 100 लोग ही मौजूद थे, उनमें भी ज्यादातर दक्षिण भारत के। यात्रा के आयोजकों में से एक केरल के रहने वाले सुरेश ने बताया।
तो 6 राज्यों से हम लोग जाएगा, 7000 किलोमीटर चलेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु।
41 दिन चलेंगे, कितने लोग इसके साथ चलेंगे?
लगभग 40 लोग हमारे साथ में वॉलंटियर लोग और संत लोग हैं, तो लगभग ज्यादा लोग भी जुड़ेगा। 2 बसेस है और हमारे साथ दूसरा गाड़ी भी है, सब हिंदू संगठन, सब राम भक्तों हमारे साथ जुड़ा है।
हालांकि वहां मौजूद अयोध्या के कुछ लोग इस बात से इनकार कर रहे थे कि कार्यक्रम में अयोध्या के लोग नहीं हैं।
अयोध्या के अब हम ही अयोध्या के हैं।
नहीं, आप तो
कुछ लोग हैं जो बाहर के भी आए हैं, तो वहां से दक्षिण से जहां से ये रथ बनकर के आया वहां के लोग हैं।
तो जो ये 41 दिन तक यात्रा चलेगी इसमें महिलाएं भी हैं कि?
महिलाएं भी हैं, साधु संत भी हैं।
नहीं, लगभग अयोध्या के हैं। यहाँ पे आज त्योहार भी है, शिवरात्रि है, इस नाते जो है कम लोग आए होंगे, साधन भी वहाँ से बंद हो जाते हैं।
28 साल पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्देश्य से रथ यात्रा निकाली थी, मंदिर तो नहीं बना। हाँ, बाबरी मस्जिद का ढांचा जरूर ढह गया, अब ये मामला कोर्ट में है। ऐसे में ये रथ यात्रा मंदिर निर्माण का मार्ग किस तरह से प्रशस्त करेगी कहना मुश्किल है। समीर आत्मज मिश्र, BBC, अयोध्या।
भारत प्रशासित कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के कारण नगर इलाके में कल से जारी मुठभेड़ में अभी तक 2 चरमपंथी मारे गए हैं। इस हमले में कल एक सुरक्षाकर्मी मारा गया था जबकि पुलिस का एक जवान घायल हो गया था। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
मंगलवार को दूसरे दिन भी करण नगर में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच गोलियों का तबादला हुआ। बीते 27 घंटों तक चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच चलने वाली मुठभेड़ में 2 चरमपंथी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अध्यक्ष SP वैद ने अपने ट्विटर हैंडल पर चरमपंथियों को मारने की पुष्टि करते हुए लिखा है, अभी तक 2 चरमपंथियों के मृत शव बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर स्थल से अगरचे गोलीबारी बंद हो गई है, ताहम जिस इमारत में चरमपंथियों ने पनाह ली थी उस इमारत में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों का कहना है कि चरमपंथियों ने सोमवार को करण नगर में कायम CRPF की 36वीं बटालियन पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की थी, जिस कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया। कैंप में दाखिल होने की नाकाम कोशिश के बाद चरमपंथियों ने कैंप के पास एक इमारत में पनाह ली, जिसके बाद चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलियों का तबादला शुरू हो गया था। IG CRPF रवि दीप साही ने बताया कि मारे गए चरमपंथी लश्कर तैयबा से हैं।
दीज टू मिलिटेंट्स दे वर फ्रॉम LAT कार्डो, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ वी हैव, एंड दे वर कैरिंग AK-47 एंड दे वर AK-47 एमुनिशन वाज आल्सो देयर।
आईजी बता रहे थे कि मारे गए चरमपंथियों से AK-47 राइफल्स बरामद की गई हैं, और जो जानकारी अभी तक हमारे पास है उसके मुताबिक चरमपंथी लश्कर तैयबा संगठन से हैं। श्रीनगर के करण नगर में हुए चरमपंथी हमले के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह एनकाउंटर स्थल से दूर रहें। श्रीनगर का करण नगर इलाका हमेशा आम जनता की भीड़ से भरा रहता है। इस बीच आज चौथे दिन जम्मू के सुंजवा कैंप पर हुए चरमपंथियों के आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। आज कैंप के अंदर तलाशी अभियान के दौरान एक और सैनिक का शव बरामद किया गया है। इस हमले में अभी तक 6 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 3 चरमपंथी भी जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। सेना ने सुंजवा जम्मू के हमले के लिए जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
खबर सच है अगर BBC पर है।
काफी रसाकशी के बाद आखिरकार ये साफ हो गया है कि दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रपति जैकब जुमा का इस्तीफा चाहती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी के प्रमुख को देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, जो इस समय उपराष्ट्रपति सिरिल रामापोसा हैं। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए मोहम्मद शाहिद से।
दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने राष्ट्रपति जैकब जुमा से देश का राष्ट्रपति पद वापस ले लिया है, लेकिन जुमा को पद छोड़ने के लिए इस्तीफा देना होगा। ANC के महासचिव S. माखशुले कहते हैं कि जुमा ने इस्तीफा देने के सिद्धांत पर सहमति जताई थी, लेकिन ये वार्ता जारी रहेगी। जुमा पर भ्रष्टाचार घोटालों में शामिल होने के आरोप हैं और साल 2009 से देश की बागडोर उनके हाथ में है। मंगलवार को पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनसे पद वापस लेने का फैसला लिया। 75 वर्षीय जुमा अगर पद नहीं छोड़ते हैं तो संसद में उन्हें विश्वास मत का सामना करना पड़ेगा और ऐसी संभावना है कि वो ये हार जाएंगे। मंगलवार को हुई बैठक के बारे में केपटाउन में राजनीतिक संवाददाता और लेखक केरियन डुप्लेसिस बताती हैं।
हमने पाया है कि उन्हें उपराष्ट्रपति सिरिल रामापोसा ने इस्तीफा देने के लिए कहा था। उन्होंने यह करने से इनकार कर दिया और ANC ने कहा कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो वह राष्ट्रपति पद ले लेंगे। कानूनी रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो केवल उनका इस्तीफा संसद के रास्ते ही लिया जा सकता है।
ये थे केपटाउन में राजनीतिक संवाददाता केरियन डुप्लेसिस के शब्द। जुमा के इस्तीफा ना देने और भ्रष्टाचार के मामले पर दक्षिण अफ्रीका का विपक्ष भी हावी है। विपक्षी पार्टी इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स के नेता और पहले ANC में रहे जूलियस मलेम्मा कहते हैं कि ये भ्रष्ट तंत्र को बचाने की कोशिश है।
वो चाहते हैं कि जुमा जाएं क्योंकि अब सिरिल के समूह के खाने का समय है और वो इसे परिवर्तन काल कह रहे हैं। परिवर्तन किससे? ये परिवर्तन काल नहीं हो सकता। ये अवधारणाओं का दुरुपयोग है। ये गुटों और सीटों का बदलाव है। परिवर्तन काल कहने की जगह हमें इसे अदला बदली कहना चाहिए। ये एक भ्रष्ट साथी से दूसरे भ्रष्ट साथी की ओर जाना है।
ये थे विपक्षी पार्टी इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स के नेता जूलियस मलेम्मा के शब्द। दिसंबर में जब से सिरिल रामापोसा ने उनकी जगह ANC प्रमुख की जगह ली है, तब से जुमा पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है। राष्ट्रपति जुमा के कार्यकाल पर हमेशा कथित भ्रष्टाचार की छाया रही है, जिसका वो हमेशा जोरदार तरीके से खंडन करते रहे हैं। साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पाया था कि जुमा ने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने अपने निजी आवास को बनाने के लिए खर्च किए गए सरकारी पैसे को वापस नहीं लौटाया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला दिया था कि 1999 के हथियार सौदा मामले में जुमा पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के 18 मामले चलने चाहिए।
जैकब जुमा पर इस्तीफे का दबाव। ये पीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। दिल्ली में 7 फरवरी को चलती बस में एक छात्रा के साथ हुई अश्लील हरकत के बाद ये सवाल फिर उठ गया है कि राजधानी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली 20 साल की एक छात्रा ने अपने साथ सफर कर रहे अधेड़ उम्र के यात्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बीबीसी संवाददाता भूमिका राय ने छात्र छात्राओं से बात की और जानना चाहा कि कहीं उन्हें भी इसी तरह के हालात का सामना तो नहीं करना पड़ता।
सोशल मीडिया पर दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने वीडियो अपलोड किया है जिसमें एक शख्स अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है। घटना 7 फरवरी की है। छात्रा का कहना है कि जिस समय वो घर लौट रही थी, साथ वाली सीट पर बैठा अधेड़ उम्र का शख्स बार बार उस पर गिर रहा था। विरोध करने के बावजूद उसने हरकतें जारी रखी और बाद में अश्लील हरकतें शुरू कर दी। लड़की का कहना है कि मदद मांगने के बावजूद कोई आगे नहीं आया। बाद में लड़की ने उस शख्स का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद ही ये मामला सामने आया। हालांकि ये इकलौती घटना नहीं है। ज्यादातर छात्रों ने बताया कि उन्हें भी बसों में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्रा कहती हैं,
सीट भी नहीं मिलती, लड़के भी बैठे होते हैं, जो लेडीज की सीट होती है वहाँ भी बैठे होते हैं, इससे भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमें खड़ा होना पड़ता है और बसें तो आती नहीं है। रात को हमारी जब कॉलेज की छुट्टी होती है, हम बहुत टाइम तक स्टैंड पर खड़े रहते हैं।
छात्रों की शिकायत है कि बसों की संख्या कम है और रात के समय उनकी सुरक्षा के लिहाज से कोई प्रबंध भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ लड़कियों के साथ होती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मयंक कहते हैं कि लड़कों को भी बसों में असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।
लड़के भी ट्रेवल करते हैं, लड़कियां भी, और ये जो प्रॉब्लम है एक खास जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके साथ है जो ज़्यादा परेशान करते हैं लड़के लड़कियों दोनों को। हम अगर सोचेंगे कि लड़कियों के साथ परेशानी है तो हाँ, लड़कियों के साथ ज़्यादा है क्योंकि वो उस तरह से उसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन लड़के उसका विरोध कर देते हैं कई बार। इसका यही चारा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें तुरंत चिल्लाकर उस इंसान पर जो भी उस समय प्रतिक्रिया हो करनी चाहिए, कुछ भी सहन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ता जाता है और वो जो है उसके परिणाम घातक होते हैं।
7 फरवरी को छात्रा के साथ घटी घटना में उसके सहयात्री का चेहरा साफ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लड़की ने सबूत के तौर पर वीडियो बनाया था जिसे दिखाने के बाद ही FIR दर्ज की गई। लड़की का दावा है कि उसकी FIR दर्ज करने में पुलिस ने 6 घंटे का समय लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला 1 घंटे के भीतर ही दर्ज कर लिया गया था। दिल्ली की बसों में सफर करने वाली ज्यादातर लड़कियों का कहना है कि उनके साथ आए दिन छेड़छाड़ होती है और लोग भीड़ का फायदा उठाकर ऐसा करते हैं।
मुझे भी इसी तरह की परेशानी होती है जैसे इन्होंने बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस ही पहले टाइम पे नहीं आती है, अगर वो आती भी है तो हमें उसमें सीट नहीं मिलती है, बॉयज चढ़ने ही नहीं देते, वो इतना लटके हुए होते हैं। और इवन जो गर्ल्स की सीट होती है वहाँ पे लिखा होता है लेडीज सीट, तो वहाँ पे अच्छे जो यंगस्टर बॉयज होते हैं वो बैठे होते हैं, उसके बाद भी नहीं उठते हैं और उल्टा हमसे लड़ने भी लग जाते हैं, और वो भीड़ का फायदा उठाते हैं ना गर्ल्स को छेड़ के भी, और उनसे कुछ कहो तो वो ऐसे फिर लड़ने को आ जाते हैं कि हम उनसे ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ कि हमारी सीट दे दो हमें या फिर देख के निकल।
बसों में असुरक्षा का मुद्दा नया नहीं है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के चुनावी मुद्दों में बसों में महिलाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर थी, लेकिन तब भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, और इससे भी ज्यादा शर्मनाक तब होता है जब लोग मूक होकर ये सब देखते रहते हैं। भूमिका राय, BBC, दिल्ली।
आज विश्व रेडियो दिवस है। आज ही के दिन 72 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। रेडियो आज भी दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सस्ता संचार माध्यम है। इस अवसर पर हमने आमंत्रित किया जाने माने ब्रॉडकास्टर और BBC के अपने पुराने साथी परवेज आलम को, और उनसे पूछा कि रेडियो से आपका लगाव कैसे शुरू हुआ।
सब यूं समझ लीजिए कि शायद इश्क हुआ तो रेडियो से ही पहले हुआ, इसलिए कि टेलीविज़न तो शायद उस ज़माने में था भी तो बहुत ही नाम के बराबर था। ये 1970 के दशक की बात है। ये वो ज़माना है जब मैं हाई स्कूल करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में आ चुका था, और रेडियो सुनना मेरे पैशंस में से एक सबसे बड़ी चीज़ थी, या शायद दूसरी चीज़ थी पतंगबाजी। तो बहरहाल रेडियो सुनते थे, घर में बड़ा सा रेडियो था, इसलिए वो ज़माना ये था कि एक से एक ज़बरदस्त अनाउंसर्स थे, कमाल के एक्टर्स थे, दीनानाथ जुच्छी नाम का एक्टर था, बीआर नागर नाम के एक्टर थे जिनको हम लोग सुनते थे, और मन्नू भंडारी का जो एक मशहूर उपन्यास है आपका बंटी, उसको सीरियलाइज जब उन्होंने किया वो सुनते थे, प्रेमचंद के बहुत सारे नाटकों और कहानियों को सुनते थे। तो ये मेरा रेडियो से ज़बरदस्त इश्क था। और उसके बाद में दूसरा फेज़ आया तकरीबन 1975 या 76 के आसपास, जब मुझे ऑल इंडिया रेडियो में एक यूथ प्रोग्राम से बुलाया गया। तब मैं अलीगढ़ में था, तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी कि साहब अलीगढ़ से उठ के आप दिल्ली जा रहे हैं रेडियो में हिस्सा लेने के लिए प्रोग्राम में। और उसके बाद में एक तीसरा फेज़ ये आया कि मैं जब दिल्ली में आ गया, हाथ पैर मार रहा था रोटी रोज़ी की फ़िक्र में, तो मैं आकाशवाणी जाता था, वहाँ पे युववाणी में मुझे कुछ प्रोग्राम्स मिलते थे, 20 रुपये मिलते थे एक प्रोग्राम के, 25 रुपये मिलते थे। और ज़बरदस्त मेरी तरक्की तब हुई जब मुझे नाटक लिखने के लिए 50 रुपये मिले। और मज़ा आ गया वो 50 रुपये लेके। और फिर कहीं जाके 1982 में एक ऐसा दौर आया कि मुझे UPSC से कॉल आ गई, क्योंकि मैंने कभी टेस्ट वगैरह दिया था, और पता चला मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। कहाँ मैं लोगों को प्रोग्राम लेने के लिए उनके पीछे भागता था, वो कहाँ मैं वो प्रोड्यूसर और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की कुर्सी पर बैठा हुआ था। और मेरे पास उस वक्त कोई 20-25 यूथ प्रोग्राम से, जिसमें रेडियो ड्रामा भी था, टॉक्स भी थी, और यूँ समझ लीजिए कि हफ्ते में जब मैं 2 बार ऑडिशंस करता था, वो ज़माने के बड़े मशहूर प्रोग्राम होते थे जैसे महफिल और मनभावन, तो यूँ समझ लीजिए कि मैं दावे से कहता हूँ कि दिल्ली में ट्रैफिक सा थमने से लगता था, लोग उसको सुनते थे। शाम में 7 बजे जब महफिल और फिर मनभावन रात में आता था, तो मतलब शायद पूरा शहर सुनता था। ये रेडियो की मकबूलियत का आलम था उस ज़माने में।
क्या बात है। और फिर उसके बाद आप BBC गए।
वो भी यूँ हुआ कि 1984 में 31st of October सुबह में हमारी प्रोग्राम ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, तकरीबन 25 से 30 प्रोग्राम ऑफिसर्स होते थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स, और मैं दिल्ली स्टेशन पर पोस्टेड था। और धड़ से दरवाज़ा खुला और एक हमारी बहुत सीनियर डायरेक्टर होती थी, उन्होंने आके बताया कि मिसेस गांधी जो अपने वक्त की प्रधानमंत्री थी उनको गोली मार दी है उनके बॉडीगार्ड्स ने, और ये भी कंफर्म हो गया कि उनकी मौत हो गई है कुछ ही देर बाद। अब सोचिए ऑल इंडिया रेडियो के पास में सुबह में ये खबर आ चुकी है, पुष्टि भी हो चुकी है, लेकिन हम उस खबर पे बैठे हुए हैं। मुझे ये भी याद है कि कहीं हमारे स्टेशन से गाना बज रहा था लाल छड़ी मैदान खड़ी, तो एकदम से लोगों को लगा भैया प्रधानमंत्री की मौत हो गई है और ऐसे गाने बज रहे हैं, तो गाने रुकवाए गए। फिर उसके बाद में ये था कि टोन डाउन किया गया पूरे सिस्टम को, यानी कि म्यूज़िक वगैरह जो भी चीज़ें हो रही थी, हंसी मजाक की ठठूलियाँ चीज़ें जो भी हो रही थी रेडियो पे, उन सबको एकदम से वायलिन सारंगी बहुत ही तकलीफ दे सारी चीज़ें बचने लगी। लेकिन ये कि ये ऐलान फिर भी नहीं हुआ कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, पूरे मुल्क ने सेंस कर लिया था, इसलिए कि BBC से खबर आ चुकी थी। शायद मेरे ख्याल से कहीं जैसे कहते हैं ना लाशऊर में सब कॉन्शियसनेस में कहीं ये बात थी कि अब शायद अगली मंजिल BBC ही होनी चाहिए, इसलिए कि हमारे पास खबर है और हम उस पर बैठे हुए हैं और BBC ब्रॉडकास्ट करने के बाद में क्या मतलब मकबूलियत पा रहा है।
आप BBC पहुंचे और वो BBC का शायद अब तक का सबसे अच्छा दौर था, बिल्कुल ही देश थे
ये। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, इसलिए कि आपके स्टूडियो में बैठा हूँ और आप अभी तक BBC के साथ में हैं, और यही नहीं मेरे सबसे प्यारे और अच्छे दोस्त अभी BBC के साथ हैं। मुझे इस बात का फख्र है कि वो सब लोग जो मशाल जलनी चाहिए और जलाते रहने चाहिए वो सब जलाए हुए हैं। आपके इतने अच्छे प्रोग्राम मैं सुनता हूँ रेडियो पे और तबीयत खुश हो जाती है कि रेडियो जिंदा है। इसी तरह से BBC पे और भी, और BBC हिंदी सर्विस नहीं, मैं कहता हूँ BBC की जो दूसरी ज़बानें हैं जहाँ से ब्रॉडकास्ट होते हैं, तरह तरह के अच्छा प्रोग्राम है। अगर फ़र्ज़ कीजिए दुनिया में अगर कोई इस वक्त कहीं बेंचमार्क है रेडियो की दुनिया में, तो कहीं किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कहने में कि वो BBC है।
अच्छा ये बताइए, आप तो तमाम देखते रहे हैं मीडिया सीन, और तब के और अब के रेडियो में क्या फ़र्क पाते हैं?
एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग अब जो रेडियो में आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे अफसोस भी होता है कि वो रेडियो के बैकड्रॉप से नहीं आ रहे हैं। वो कोई बात नहीं है, ख़ासतौर पे BBC में इस तरह की परंपरा रही कि आप रेडियो के बैकड्रॉप से ना आए, लेकिन ये कि आपका अच्छा सहाफ़ी पत्रकार होना ज़रूरी है, जर्नलिस्ट होना ज़रूरी है, वो भी अपनी जगह ठीक है, मगर क्या ये मुमकिन नहीं कि आप अच्छे रेडियो के ब्रॉडकास्टर भी हों और अच्छे पत्रकार भी हों? ये कॉम्बिनेशन कहीं BBC में एक अरसे से कम होता चला गया, और जगहों पे तो ना के बराबर रह गया। और जगहों पे क्या है कि बहुत अच्छी आवाज़ लगाने वाले मौजूद हैं जो खालिस एक रेडियो की निशानी होती है, लेकिन कमबख्त उनको पत्रकारिता नहीं आती ये कुछ जो बाहर के रेडियो स्टेशन हैं उनके साथ में ये मसला है। BBC में शायद थोड़ा सा मसला ये है कि लोग या रेडियो में ढंग से उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कि अगर ये थोड़ा सा रेडियो जीनिक प्रोग्राम बना लेते, कुछ थोड़ी सी नेचुरल साउंड्स, कुछ दिलचस्प, थोड़ा सा आगे पीछे जो एक्चुअलिटीज़ हैं, जो बैंड्स हैं, उनको ऐसे सलीके से कर लेते तो ये प्रोग्राम कितना अच्छा हो सकता था। ये मेरा एक फेयर क्रिटिसिज्म है बीबीसी के लिए भी और जो दूसरे रेडियो ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में, मैं क्योंकि पिछले 5 साल से ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहा था और मैं डीन और प्रोफेसर था जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की एक डिपार्टमेंट के साथ में, तो मेरा अनुभव ये था कि यहाँ रेडियो की तो बहुत ही बुरी हालत है। नॉन बीबीसी रेडियो की मैं बात करूँ, जो ख़ास तौर पर जिसको एफएम रेडियो कहा जाता है, बहुत बुरा हाल है, सिवाय इसके कि गाना छचोरपन वायद किस्म की बातें, बहुत ही कम ऐसे रेडियो नेटवर्क्स हैं, बहुत ही कम ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ आपको सेंसिबल ब्रॉडकास्ट सुनने का मौका मिलता है। तो बीबीसी तो एक तरह से मार्केट लीडर है इन सब के दरमियान, लेकिन फिर भी बीबीसी के जो कुछ प्रोड्यूसर वगैरह हैं उनको थोड़ी सी रेडियो की ट्रेनिंग और लेनी चाहिए।
विश्व रेडियो दिवस पर बात हो रही थी जाने माने ब्रॉडकास्टर परवेज आलम से। पोर्ट एलिजाबेथ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हो रहे 5वें एक दिवसीय मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 254 रन बना लिए हैं और भारत की ओर से सबसे अधिक रन रोहित शर्मा ने बनाए 115। सूर्यांशी पांडे पूरे मैच पर नजर रखे हुए हैं, बताइए क्या स्कोर है, सबसे पहले तो ये बताएं।
बिल्कुल रिहान जी, जैसा आपने बताया 255 अब हो गया है और 6 विकेट जो है वो गंवा दिए हैं इंडिया के खिलाड़ियों ने। और अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो 5वां ओडीआई मुकाबला ये है और इस मुकाबले में जब पहली बार टॉस हुआ तो साउथ अफ्रीका ने टॉस तो जीता, लेकिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी ना करके गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल ठीक किया क्योंकि कहा जाता है कि इस पिच पर चेजिंग टीम जो होती है ना वो जीतने का दावा ज़्यादा रखती है, तो ऐसे में फैसला तो सही लिया गया। और अगर स्कोर की बात करें तो इस पिच पर कहा जाता है कि एवरेज स्कोर जो पहली टीम जो बल्लेबाजी करती है उसका रहता है 227, तो ऐसे में इंडिया सही दिशा में जा रही है, लेकिन जैसा कि यहां का रिकॉर्ड है चेजिंग टीम जीतती है ज्यादातर मैचेस, तो देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका का ये फैसला बॉलिंग करने का कितना सार्थक साबित होता है। और अगर हम बात करें सेंचुरी की तो रोहित शर्मा ने 115 रन बनाए 126 गेंदों पर, जो कि काफी काबिले तारीफ है, लेकिन साथ ही साथ ट्विटर पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है जिस तरह से विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे रन आउट हो गए उनके 100 शतक की वजह से, ये एक मजाक उनका बन गया है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कोर उन्होंने खड़ा किया है।
लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई थी भारत की और जिस तरह से स्कोर 6 रन का एवरेज चल रहा था, अब तो कम हो गया एवरेज, शुरू में लग रहा था कि 300 पार कर जाएंगे, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है उतना स्कोर पाना।
हाँ, और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँ तो लुंगी निगेडी का है। अगर आप देखें तो उन्होंने 2 श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या को जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है उनको बहुत जल्दी आउट कर दिया और ये फायदा जो है वो साउथ अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका को मिला है। आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है,
बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यांशी पांडे आपका। और चलते चलते श्रद्धांजलि भारतीय उपमहाद्वीप के महान कवि फैज अहमद फैज को उनकी 107वीं वर्षगांठ पर, सुनिए उनकी मशहूर नज़म इंतसाब जिसे स्वर दिया है शुएब हाशमी और नैयरा नूर ने।
आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम के है जिंदगी के भरे गुलसिता से खफा जर्द पत्तों का बन।
फैज अहमद फैज का कलाम। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जैकब जुमा को राष्ट्रपति के पद से हटाने का फैसला किया है। केरल के कोच्चि स्थित एक शिपयार्ड में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य जख्मी हुए हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया से संबंधों को सुधारने के लिए एक और कोशिश करने की बात कही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।